जैन रात के वक्त जन्नत के घर पर ईशानी से मिलने के लिए आया हुआ था। ईशानी काफी परेशान थी, क्योंकि आज जो भी हुआ था उसके बाद उसने इंडिया जाने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी। अब उसे एहसास हो गया था कि हाँ, वाकई पाकिस्तानी आर्मी काफी खतरनाक है, जो उसकी नहीं सुनने वाली थी। ईशानी और जैन बात कर रहे थे, तभी जन्नत के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। जैन काफी ध्यान से जन्नत के घर पर आया था, क्योंकि वो जानता था कि ज़रूर शाहबाज खान ने उसके पीछे किसी सोल्जर को लगा रखा होगा। जब जैन आया था तब उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब अचानक किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर जैन घबरा गया था। जैन ने परेशान चेहरे के साथ कहा, ईशानी प्लीज़ तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ, हम जाकर देखते हैं कि कौन आया है। जन्नत और हमें साथ में देखेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। ईशानी ने उसकी बात पर हामी भरी और जन्नत के घर बनी ऊपर अटारी के अंदर जाकर छुप गई थी। दरवाज़ा खोलने से पहले जैन ने जन्नत की तरफ देखा। जन्नत भी परेशान थी तो जैन ने कहा, तुम्हारे इस तरह परेशान होने से सब ठीक नहीं हो जाएगा, खुद को नॉर्मल दिखाना है। जन्नत ने उसकी बात पर हामी भरी। जैन जन्नत के साथ बाहर आया और दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गया। सामने उसके डैड शारिक इकबाल खड़े थे। शारिक के साथ में शहनाज और एक आदमी भी था। वो जल्दी से अंदर आए और घर का दरवाज़ा बंद किया। इस वक्त शारिक के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। वो जैन को डांटते हुए बोले, हमने तुम्हें सिर्फ दो दिन के लिए उस लड़की का ध्यान रखने के लिए कहा था, और तुमने तो कुछ घंटे भी ठीक से नहीं गुजारे। ये तो शुक्र मनाओ कि हमें यहाँ की अपडेट मिल गई। आई एम रियली सॉरी अब्बू, इसमें जैन की कोई गलती नहीं है, हमने ही नादानी की थी, जन्नत ने आगे आकर सारा कसूर अपने ऊपर लेते हुए कहा। शारिक ने उसकी तरफ गुस्से में देखकर कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सारा कसूर अपने सिर लेने के बाद हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? हमारे लिए हमारे सारे बच्चे बराबर है, तुमने गलती की है तो तुम्हें भी डांट पड़ने वाली है। सॉरी अब्बू, गलती हमारी तरफ से भी हुई है जो हमने जन्नत को स्ट्रिक्टली नहीं कहा था, जैन ने जन्नत का हाथ पकड़कर कहा। शहनाज उन दोनों के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसने शारिक से कहा, अब गुस्सा थूक भी दीजिए, जल्दी से जल्दी उस मुसीबत से निमटते हैं, वरना मामला बढ़ा तो प्रॉब्लम आप तक भी आ सकती है। हाँ, अब माहौल ही ऐसा है कि इन्हें डांट भी नहीं सकते। वो लड़की जहाँ भी है उसे बाहर लेकर आओ और उसे बुर्का पहनकर रेडी रहने को कहो, हम अभी उसे खुद इंडिया भेज कर आएंगे, शारिक ने सख्त आवाज में कहा, जिससे जैन और जन्नत दोनों ही घबरा गए थे। लेकिन अब्बू, आप जाओगे? ये बहुत रिस्की है, हम नहीं चाहते कि हमारी गलती का खामियाजा आप भुगतें, जैन ने तुरंत कहा। तुम्हारे ऊपर आर्मी की सख्त निगाहें हैं, तुम यहीं पर रहकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करो, और चिंता मत करो, हम इसे छोड़ आएंगे, शारिक ने जवाब दिया। उनके कहने पर जन्नत ईशानी को लेकर आई थी। ईशानी शक्ल से काफी मासूम लगती थी। उसे देखकर शारिक ने कहा, अगर आर्मी तुम्हें पकड़ लेती तो तुम्हारे चेहरे की मासूमियत भी कोई काम नहीं आती। अब जल्दी से बुर्का पहनो और हमारे साथ चलो। ईशानी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो हिचकिचा रही थी। शारिक का सख्त मिजाज देखकर उसे घबराहट हो रही थी। जैन ने ईशानी के पास आकर कहा, ये हमारे अब्बू हैं और हमें इनके वादे पर उतना ही भरोसा है जितना अल्लाह पर है। ये तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छी इंसान हो, आगे से अपनी अच्छाई का दूसरों को फायदा मत उठाने देना, वरना फिर से किसी मुसीबत में फंस जाओगी। ईशानी ने उसकी बात पर हामी में सिर हिलाकर नम आंखों से कहा, थैंक यू सो मच इतने दिनों तक मेरी केयर करने के लिए और मुझे सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए। शायद फिर कभी हमारी बात नहीं होगी, और अभी भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें कोई बड़ी सी थैंक यू स्पीक दे सकूं, लेकिन हाँ, जगह चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, और तुमसे मिलने के बाद अच्छाई पर मेरा यकीन और भी ज्यादा गहरा हो गया है। जैन ने मुस्कुराकर प्यार से ईशानी के बालों पर हाथ रखकर उसे सहलाया। फिर वो जन्नत के पास जाकर गले लग गई। जन्नत के गले लगते ही ईशानी ने हंसते हुए भारी आवाज में कहा, तुमने ठीक कहा था कि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग होते हैं, कभी लीगल तरीके से इंडिया आने का मौका मिले तो जरूर आइएगा, मैं तुम्हें अपने वहां के अच्छे लोगों से मिलवाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे, जन्नत ने सुबकते हुए कहा। ईशानी को जन्नत से मिले हुए लगभग 20 दिन हुए होंगे, लेकिन इतने कम वक्त में भी उन लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन गया था। उन लोगों से विदा लेने के बाद ईशानी ने बुर्का पहना और सबकी नज़र से छुपते हुए वो शारिक, शहनाज और उसके आदमी के साथ गाड़ी में थी। गाड़ी में बैठे ही ईशानी ने पूछा, हम कब तक वहां पहुंच जाएंगे? टाइम लगेगा, क्योंकि हमने जाने के लिए राजस्थान बॉर्डर को चुना है। जैसलमेर के पास में पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वहां की सिक्योरिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उस तरफ का एरिया बीहड़ है, एक टेम्पल होने की वजह से विजिटर्स भी आते जाते रहते हैं, बाकी हमने इंतजाम कर रखा है, शारिक ने सख्ती से जवाब दिया और फिर अपने आदमी को गाड़ी चलाने का इशारा किया। ये शारिक की VIP आर्मी वैन थी, जिसे रोकने की वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं थी। जैसलमेर बॉर्डर पर एक माता का मंदिर बना हुआ था, जहां अक्सर विजिटर आते रहते थे। उसी का फायदा उठाकर कैप्टन शारिक अपनी पत्नी के साथ घूमने का बहाना बनाकर ईशानी को वहां लेकर गए थे। उनका सफर काफी लंबा था, तो बीच रास्ते ईशानी को नींद आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में माया पूरी तरह अकेले पड़ गई थी। दिव्या जेल के अंदर थी, विक्रांत की जमानत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने रुद्राक्ष को यह कहा था कि उसके अंडरवर्ल्ड और टेररिस्ट के साथ कनेक्शन है।
रुद्राक्ष जब उनसे मीटिंग करने गया था तब उनकी मीटिंग रिकॉर्ड कर ली थी और इस वजह से विक्रांत का केस स्पेशल सेल के पास गया था। उन सब से निपटने के बाद रुद्राक्ष अपने घर पर आया, दीपिका और रुद्री के पास। मोक्ष भी वहीं पर था। मोक्ष ने खुराना फैमिली के साथ जो भी हुआ उसके बारे में उन दोनों को बता दिया था। वैसे भी टीवी में सुबह से यही न्यूज चल रही थी। रुद्री ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, ऐसे लग रहा है जैसे आज किसी ने मेरे साथ इंसाफ किया है। पिछले 23 साल से मैं अपने बेटे के बिना रह रही थी और उन्होंने मुझे तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रुद्री की बात सुनकर मोक्ष ने हल्के तरीके से कहा, डोंट वरी मॉम, अब भाई भी उन्हें तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी सब केस में हैंडल कर लूंगा और उन सबको बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब हम आराम से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। आज वो सब काफी खुश थे। इन सब के बीच दीपिका थोड़ी उदास थी। उसने रुद्राक्ष से पूछा, क्या ईशानी का कुछ पता नहीं चला? रुद्राक्ष ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने अपने घर वालों को सबक सिखाने के चक्कर में ईशानी पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूँ वो कहाँ है और मैंने एक आदमी को उसे ढूंढने के लिए लगा भी दिया है। जल्दी वो हम तक पहुँच जाएगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा, दीपिका ने जवाब दिया। रुद्राक्ष अपनी फैमिली के साथ खुश था क्योंकि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं था, ना किसी विक्रांत खुराना का और ना ही इस बात का कि उन्हें एक दूसरे से कोई अलग कर देगा। दूसरी तरफ राहुल मित्तल अपने हाथ पैर मारकर थक गया था, लेकिन फिर भी वो ईशानी तक नहीं पहुंच पाया था।